परम पूज्य रामदास जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए पद्म पुराण की कथा के प्रसंग में विविध प्रकार के ऋषियों के द्वारा जो पुष्कर तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया है, उस तीर्थों में मात्र तीर्थ स्नान का फल ही नहीं बल्कि तीर्थ के साथ दान का महात्म्य बतलाया है, व्रत का महात्म्य बतलाया है। व्रत व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए बड़े उपयोगी हैं। जब व्यक्ति उपवास होता है, भूखा रहता है, उस समय उसका चिंतन होता है, हम क्यों आज व्रत हैं, क्यों आज हमने अन्न ग्रहण नहीं किया। जब खाता पीता है खूब तो सोता है, नींद आती है, और जब आहार ग्रहण नहीं करता है तो उसे संसार के विषय बाधित नहीं करते हैं, निद्रा नहीं आती है। जब निद्रा नहीं आती है तो सोचता है आज हम क्यों उपवास है, इसका फल क्या है। तो बाह्य वृत्ति से देखें तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए व्रत की आवश्यकता है, उपवास की। जब हम उपवास रहेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, अथवा जलाहार करके रहेंगे, अथवा हल्का फलाहार करके रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे केंद्रित होती जाएगी और हम चिंतन करेंगे कि आज हमने अन्न छोड़ा है, रोज की अपेक्षा हमारी दिनचर्या आज कुछ विशिष्ट है, उसका फल क्या है। तो उस व्रत के जो देवता हैं उनका हम चिंतन करते हैं कि हमारे इस व्रत करने का फल, हम अमुक अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न में आज पाप बतलाया है, अन्न आज ग्रहण करेंगे तो निद्रा लेंगे, निद्रा लेंगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा। इसलिए आंतरिक शुद्धि के लिए व्रत की उपयोगिता है। साथ में ही विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जब देही आत्मा निराहार होता है तो सांसारिक विषय उससे दूर होने लगते हैं, और सांसारिक विषय जैसे ही दूर होते हैं तो वह अपने आप को समझने में तत्पर हो जाता है। व्रत के दिनों में असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दिनों में जितना हो सके भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, नाम मंत्र का जप करना चाहिए, उस देवता का स्मरण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और जितना हो सके सामर्थ्यानुकूल दान करना चाहिए। दान का अभिप्राय जो वस्तु हम दूसरे को दे रहे हैं, देने के बाद फिर उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता है, यह सोचना चाहिए। यह आग्रह नहीं रखना चाहिए कि हमने ये दान दिए तो हम महाराज जैसा हम चाहे वैसा उसका करें, क्योंकि दान देने वाला जब अपना अधिकार नष्ट करता है और दूसरे का अधिकार दी गई वस्तु पर स्थापित कर देता है, उसी को दान कहते हैं। स्व सत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व स्थापनम दानम, अपना अधिकार समाप्त करके जिसको दिया गया उसको सर्वा सर्वा मालिक बना देना संपूर्ण वस्तु का, यह दान होता है। आजकल कितनी जगह विसंगति होती है कि भाई हम आपको ये दान कर रहे हैं, आप इससे ये कर देना, ये आपको नहीं कहना है। और गुप्त दान हो तो फिर क्या कहना है, गुप्त दान का महिमा सामान्य दान के अपेक्षा बहुत अधिक बतलाया। और सभी दानों में भी अन्न दान की विशेषता सर्वाधिक है, इसलिए व्रतों में हम अन्न का त्याग करते हैं। यदि हम अन्न का त्याग करेंगे तो धरती का अन्न बचेगा, तो अन्न प्राणियों को भी मिलेगा, और दूसरे दिन द्वादशी को हम अन्न दान करके ब्राह्मण को भोजन करा करके और फिर हम अन्न ग्रहण करते हैं। मतलब जिसका हमने त्याग किया वो हम परमात्मा के निमित्त त्याग करके किसी न किसी को प्रदान करते हैं। तो अपना त्याग दूसरे के लिए फल रूप में कहीं न कहीं जा रहा है, तो उसे जो उस अन्न से, उस वस्त्र से, उस द्रव्य से प्रसन्नता होगी, उसकी प्रसन्नता अपने लिए काम आएगी, वह हमारा प्रेमी बन जाएगा। दान के विषय में तो इतना कहा कि पुत्रादपि प्रियतरम खलु तेन दानम, पुत्र से भी प्रिय व्यक्ति को दान होता है। जिसको दान दे दिया ना, तो दाता जो है उसको अत्यधिक अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होता है। ये दान की महिमा है। पुष्कर तीर्थ में एक दान की महिमा से संबंधित एक वार्ता आती है। उस वार्ता में सप्तर्षि लोग पुष्कर ऋषि में रह रहे हैं। उसी समय में एक राजा वहां आते हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा ये दान आप ग्रहण करिए। ऋषियों ने कहा, भाई देखो, ये दान हम नहीं ले सकते हैं। कारण क्या है कि हमने अप्रतिग्रह व्रत को धारण किया है। अप्रतिग्रह का मतलब होता है कि हमने संकल्प किया है हम किसी का पैसा नहीं लेंगे, किसी का धन नहीं लेंगे, किसी का अन्न नहीं खाएंगे। यदि दूसरे का अन्न लेंगे, दूसरे का द्रव्य लेंगे, तो फिर उसके तरफ हमारा पुण्य जाएगा। अत्यधिक अन्न दान यति, यति को पात्र भर भिक्षा देने वाले को संपूर्ण प्रकार की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लिखा है। लेकिन ऋषियों ने कहा, नहीं, हमने अयाचक वृत्ति स्वीकार किया है, हम किसी से दान लेने वाले ही नहीं है। राजा बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या, ये ऋषि लोग क्या करते थे, वृक्ष से टपके जो फल थे औदुम्बर के, उसी को लेकर के खा कर रह जाते थे। उठा करके एक एक दो दो फल लेकर के खा के रह जाते थे, पानी पी करके, और जप करते थे कि हम दूसरे का दान नहीं लेंगे, क्योंकि तीर्थ में तो अनंत गुना फल होता है दान लेने का। राजा के मंत्री बड़े होशियार थे, वो औदुम्बर के उन फलों के भीतर सोना लगा दिए कि औदुम्बर के फल के अंदर जब सोना रहेगा, ऋषि लोग उठाएंगे तो पता चलेगा। और तो वशिष्ठ जी ने देखा कि तो इसके अंदर स्वर्ण भरा हुआ है, उन्होंने फेंक दिया उसे। कहा कि नहीं, ये तो जितना औदुम्बर का वजन होना चाहिए उससे अधिक वजन वाला दिखता है, ये हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। कहा कि आखिर ऐसा ऋषि ने क्यों किया। तो अभिप्राय उनका यह था कि हम जब सोने के चक्कर में जाएंगे तो हम संसार के विषयों में सोने लगेंगे। सोना मतलब संसार के विषय में लग जाना है। संसार के विषय में जब सोने के, सोने का मन है, मन उसमें शयन करने लगेगा, मन जाकर के उसमें लगने लगेगा। सोने के चलते ही मुकुट में कलयुग का प्रवेश हुआ, तो ऋषि की दुर्दशा के कारण श्रीमद् भागवत का श्रवण करना पड़ा परीक्षित जी को। तो जो सोना है वह उपयोगी है, सुगंध उसमें नहीं है। भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न सोने और मूंगे की उत्पत्ति बतलाई गई है, लेकिन उसमें बड़े दोष है ग्रहण करने में। ऋषियों के लिए तो वो विष के समान ही है, क्योंकि सोना लेंगे तो उसमें रति आ जाएगी। और सोने दान का महत्व भी अत्यधिक बतलाया है शास्त्रों में। एक बार की बात है, एक पंडित जी के पास बड़ी गरीबी आ गई थी। उन्होंने सोचा कि आज क्यों न राज दरबार में प्रवेश किया जाए और कुछ वहां से जो भी बने लेकर के कुछ चुरा लिया जाए, तो जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। वो चुराने के लिए राजा के दरबार में प्रवेश कर रहे। जब खजाने के पास गए तो सोचा कि ये सोना चुराने का तो ये बहुत बड़ा दंड है, तो सोना नहीं चुराएंगे, चलो तब सोचे कि अन्न ले लें, कहे कि अन्न दान भी बहुत बड़ा दान है, क्या करें। ऐसे सोचते सोचते सभी वस्तुओं के पास क्रमशः गए और सबके पास जा जा करके सोचे कि इसका ये पाप है, इसका ये पाप है, इसका ये पाप है। अंत में बड़ी तेज भूख लगी थी, दिन पूरा प्लान बनाने में चला गया था और रात पूरा चिंतन में चला गया। तो उन्होंने हाथ लगा करके कुछ निकाला, समझा शक्कर है, ऐसा कह करके नमक खा लिया राजा का। कहा कि ओहो, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये राजा का मैंने नमक ग्रहण कर लिया है और जिसका नमक खा लेना चाहिए फिर उसके लिए तो अंततः उसके प्रति प्राण जाए पर वचन जाए ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। तब तक सुबह हो जाता है, वह राजा के जहां दरबार लगता था उसी आसपास में छुप जाते हैं कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, पंडित आदमी है ये नहीं कह सकते कि चोरी करने आए थे। सुबह में राज दरबार लगती है, पंडित उधर ही छुपे हुए थे, तो राजा को एक श्लोक स्मरण आ रहा है कि ये हाथी, ये घोड़े, ये राज दरबार, ये जितना भी है इसमें मेरा मन भ्रमण तो करता है लेकिन क्या ये कब तक साथ देंगे। ऐसा कह करके अंतिम पद था, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आंख बंद हो जाने के बाद कुछ भी अपना नहीं है, एक धर्म ही अपना बंधु है। तो ये अंतिम पद जो था वो राजा को स्मरण नहीं आ रहा था, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। तीन श्लोकों में चार पाद होते हैं, तो चार पाद में से तीन पाद तो राजा को आ गया, चौथा जो असली था वो नहीं उनको आ रहा था। पंडित जी श्लोक पढ़े हुए थे, विद्वान थे, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोल दिया। राजा कहे कि अरे हमको स्फुरण नहीं हो रहा था, कौन व्यक्ति है ऐसा कि जो बोल दिया, सामने आओ। तो पंडित जी वहां प्रकट हुए, कहे महाराज ये काम मेरा है, मैंने बोल दिया। तो कहा कि आप यहाँ कहाँ से आ गए अभी सुबह सुबह। महाराज क्या बतलाऊं, बतलाऊं तो उसमें मेरी शिकायत होगी और नहीं बतलाऊं तो दंड का भागी हूं, फिर भी सत्य बोलना चाहिए, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। मेरे पास बड़ी दरिद्रता आ गई तो दरिद्रता देवी ने इतना तंग किया छुधा कि मैंने सोचा कि चलो आज चल के चोरी करते हैं, क्योंकि तो बुभुक्षितम किम न करोति पापम, जो व्यक्ति भूखा होता है क्या क्या पाप नहीं करता है, इसलिए भूख से रहा नहीं गया, आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया था। पूरी सोचा कि इसको चुराते हैं ये दंड मिलेगा, उसको चुराते हैं वो दंड मिलेगा, ऐसा सोचते सोचते सुबह का समय हो गया, फिर मैं यही डर के मारे छुप गया। अब पंडित आदमी हूँ, अब जो आपको करना हो जो आपको समझ में आया करिए। क्योंकि नहीं नहीं पंडित जी, ये तो क्या है कि शास्त्र जो है ना वो सबको बचा ही लेता है, आप पंडित हैं और आप चोरी के उद्देश्य से आए थे और आपके शास्त्र ने, आपके सत्संग ने आपको बचाया, आपके स्वाध्याय ने आपको बचाया, और यह दायित्व मेरा है कि मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण भूखा न रहे। राजा लोग प्राचीन काल में अपने मंत्रियों को, अनुचरों को आज्ञा देते थे कि जाओ हमारे राज्य में रात को घूमो, भ्रमण करो, अनुचरों के द्वारा पता करो कौन दुखी है। तो यह दायित्व हमारा है, यह तो मुझसे पाप हुआ है, आपसे तो पाप बच गए आप आपसे, इसलिए उनको 100 मुहरे दान में और आजीवन उनको खर्च दिया गया और राज्य का पंडित नियुक्त किया गया, राज पंडित नियुक्त हो गए वो। तो ये क्या है कि अपने कर्तव्य स्वाध्याय का फल है और सत्संग का फल है। जिस व्यक्ति के पास स्वाध्याय होगा, जिस व्यक्ति के पास स्वधर्म होगा, वह कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। थोड़े देर के लिए विपत्ति जरूर आती है, वो तो सूर्य पर भी ग्रहण लगता है, सूर्य की परीक्षा के लिए, तो मनुष्य की कौन बात करे। आकाश में सूर्य और चंद्रमा पर भी राहु का ग्रहण लग जाता है। कहा कि सही गगन बिहारी कलमश ध्वंसकारी दश शत करधारी ज्योतिषा मध्यचारी विधुर विधि योग दृश्यते राहुणा सौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। अपना जो कर्म है ना वो हर व्यक्ति को हैरान करता है, क्योंकि आज का कर्म कल का भाग्य बनने वाला है। इसलिए आज जो हम खेती करते हैं ना उसी खेती का फल हमें कल मिलने वाला है। इसलिए कर्म से हमें सावधान रहना चाहिए पंडित जी के तरह से। तो कर्म करने के लिए हमें शास्त्र और सत्संगति महात्माओं की संगति यही बतलाती है, और हमेशा दान करते रहना चाहिए। नित्य दान का विधान है, रोज 5 रुपये 10 रुपये रोज दान करते रहना चाहिए। एक ब्राह्मण का भोजन हमेशा अपने घर में कराना चाहिए, न हो तो अन्न निकाल करके ही हम रख दें तब आहार ग्रहण करें, क्योंकि तो अन्न में दोष होते हैं। उन दोषों के लिए बलि वैश्वदेव, गाय इत्यादि के लिए ग्रास, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए, पहले मैंने वैश्वदेव के विषय में चर्चा कर दिया है इसलिए उस पर चर्चा नहीं करता हूँ। एक बार की घटना है, एक ऋषि प्रवर अपने पुण्य प्रताप से, तपस्या के प्रभाव से वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए थे, लेकिन कष्ट यह था कि उन्होंने अपने जीवन में किसी को कोई दान नहीं दिया था, और अन्न दान तो उन्होंने कभी ही नहीं किया। तो पुण्य प्रभाव से स्वर्ग में तो पहुंच गए, लेकिन स्वर्ग में होता क्या है कि किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को क्षुधा बाधित नहीं करती है, जो कामनाएं होती है उसकी पूरा हो जाती है, लेकिन उनको स्वर्ग में भी भूख लगता था। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्रादि देवताओं से कहा कि महाराज ये तो बड़ी तकलीफ का विषय है, मुझे भूख लग रही है। देवताओं ने कहा ये तो आश्चर्य है, यहाँ किसी को भूख नहीं लगती है, यहाँ तो हमेशा 16 वर्ष के लोग रहते हैं और उनकी सारी कामनाएं पूरी होती है, न भूख बाधित करती है न रोग बाधित करता है। तो फिर विचार किया ऋषियों के द्वारा, ऋषियों से पूछा गया भाई क्या बात है जरा आप इनके विषय में बताओ। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी ने विचार करके कहा कि इन्होंने कोई दान नहीं किया है इसलिए इनको ऐसा हो रहा है। तो वो करते क्या थे कि अगस्त्य ऋषि ने देखा कि सरोवर के पास में नित्य ऊपर से एक विमान आया करता था स्वर्ग लोक से, और वहां एक शव था, उस शव को वो खाते थे रोज, और जब पेट भर जाए तो फिर ऊपर विमान से जाते थे। तो स्वर्ग लोक से उनका रोज मर्त्य लोक में आना होता था। यह घटना जब अगस्त्य ऋषि ने देखा तो सोचे कि कल शाम से मैं यज्ञ करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ इस नदी के तट पर, और कोई नया व्यक्ति यहाँ आया नहीं, और सुबह सुबह में शव का भक्षण करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, ये श्वेत वस्त्रधारी। तो बतलाया, पूछा कि महाराज आप कौन हैं श्वेत वस्त्रधारी। तो उन्होंने बतलाया कि मैं पहले का एक राजा था, और राजा होने के नाम श्वेत केतु शायद नाम था, मैं पहले का राजा था, और राजा होने के साथ में मैंने तपस्या तो बहुत किया लेकिन अन्न दान हमने कभी नहीं किया।